ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदगोपाल कुमाराय गोविंदा। हे कृष्ण करुणा दीनम गोपेश गोपी का कांता राधा तप्ता कंचन राधे वृंदा विश्वाना सुत देवी श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदा श्वास हरे कृष्ण 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 हरे राम। हरे कृष्ण जी। क्वेश्चन, ये जो आप प्रश्न पूछती हो डरना नहीं, मैं कुछ ऐसा नहीं बोल रहा हूं। ये जो आप प्रश्न पूछती हो इस प्रश्न के माध्यम से भी आप कृष्ण की सेवा करती हो। इसकी वजह है कि जिस तरह से कोई जब कोई म्यूजिक सुनना होता है तो हम पहले उसका क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो म्यूजिक होता है। ऐसे संत गुरु साधु या कोई भी धार्मिक या हमारे बड़े बूढ़े जो भी थे या हैं, उनसे कुछ बात समझनी है तो पहले हमें पूछना पड़ता है। और ये प्रश्न पूछना तद्विधि परिप्रश्नेन सेव्या, तो प्रश्न पूछना भी एक सेवा है और प्रश्न पूछना ये कृष्ण की आज्ञा है। मजे की बात यह है कृष्ण ने कहा है कि जाके तुम पूछो, और प्रश्न पूछने का अर्थ है कि हम कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं और हमारी पूरी पूरी उसमें इंटरेस्टिंग है, हम पूरी तरह से इन्वॉल्व है उसमें। और प्रश्न पूछना सत्संग में अपने आप को पार्टिसिपेट करना है, पार्टिसिपेट करना है। जिस तरह से हमारे देश की पार्लियामेंट है और उस पार्लियामेंट में हम अपने एमपी को भेजते हैं तो जो एमपी वहां प्रश्न पूछता है सरकार से मिनिस्टरों से तो वहां की जनता बोलती है कि बहुत अच्छा, हमारी बात को वो रखता है और प्रश्न पूछता है। तो ये प्रश्न पूछना कृष्ण की आज्ञा है। इसका मतलब है कि हम कुछ जानना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। प्रश्न पूछ न पूछने के दो कारण हैं, या तो सब कुछ समझ में आ चुका है आप क्या पूछे, या कुछ भी समझ में नहीं आया तो क्या पूछे। परंतु जब हम पूरी तरह से सत्संग में इन्वॉल्व है, आप सत्य बताना, यदि राजा, कौन राजा, धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न ना पूछता तो गीता हम तक पहुंचती नहीं। मंत्र, यदि कृष्ण अर्जुन से प्रश्न ना पूछते तो इतना बड़ा संवाद भगवद गीता का हमारे पास आता नहीं। यदि राजा परीक्षित सुखदेव महाराज से कुछ ना पूछते तो भागवत की कथाएं हम तक ना पहुंचती। तो मैं आप सब बहनों से, पूरी संगत से ये निवेदन करता हूं कि आप जब प्रश्न कब उठता बताओ, जब हम विचार करते हैं तो विचार में अरे हाँ ये से कैसे क्या हुआ, तो ये शंका नहीं है बल्कि ये जिज्ञासा है। अब एक कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो इतिहास बना देते हैं, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर एक इतिहास बन जाता है। जैसे इन्होंने ही शिला भक्तिपाद से पूछा कि शिला भक्तिपाद आप ये गुरु परंपरा हम तक पहुंचा रहे हैं और ये ज्ञान पहुंचा रहे हैं, लेकिन आप किसको सक्सेसर बनाएंगे अपना, ये एक इतिहास था, ये प्रश्न एक इतिहास था और इसका उत्तर जो मिला वो हमेशा के लिए एक प्रमाण रह गया, एक प्रमाण रह गया। तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाते हैं और वो उसका उत्तर एक प्रमाण बन के रह जाता है। तो जी पूछिए।
हरे कृष्ण बापूजी, एक श्लोक गीता में दो बार कृष्ण ने कहा है, श्रेयान स्वधर्म विगुण परधर्मात् स्वनिष्ठतात्। मतलब अब स्वधर्म को त्रुटिपूर्ण ढंग से करना भी पराय धर्म को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। तो बापूजी, जो लोग पराय धर्म को भली भांति करते हैं मतलब वो पराय धर्म को अपना समझ के करते हैं, तो क्या फर्क है, स्वधर्म क्या है और पराया धर्म क्या है?
देखो, इस समय हम इन चक्करों में न पड़े तो बेहतर है, क्योंकि इस संसार में जो धर्म है, पहली बात यह है कि अंग्रेजी में रिलीजन बोलते हैं, उर्दू में मजहब बोलते हैं और हमारे यहां धर्म बोलते हैं, लेकिन वहां रिलीजन का कुछ और मतलब निकलता है, वहां मजहब का कुछ और मतलब निकलता है। अब आप रिलीजन को हिंदी में बोलो तो क्या बोल पाओगे, कोई है ही नहीं शब्द। मजहब को हिंदी में बोलो तो संस्कृत, कोई उसका रिप्रेसमेंट नहीं है, क्योंकि वो अपने हिसाब से। लेकिन धर्म, धर्म मतलब ड्यूटी, कर्तव्य, धर्म। अब यहां पर स्वधर्म और पर धर्म की चर्चा हो रही है। अब स्वधर्म यहां अपनी ड्यूटी है या रिलीजन का मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे यहां शब्द रिलीजन तो है ही नहीं, शब्द मजहब तो है ही नहीं, और जो हमें अंग्रेजों ने दिया है वो हमारे इतिहास को बर्बाद कर रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा हिंदू मैथोलॉजी, ये हमारे शास्त्रों का कोई शब्द नहीं, ना भगवद गीता में, ना भागवत में, ना रामायण में, ना भारत में, महाभारत में। मैथोलॉजी शब्द मिथ से निकला, मतलब एक काल्पनिक जो है ही नहीं। तो ये अंग्रेजों ने सही मानों में हमारे कल्चर को, हमारे संस्कार को, हमारी संस्कृति को पूरी तरह से तबाह करने का काम किया। आपको पता नहीं है मेरी बहनों, मेरी माताओं, खासकर आज के बच्चों को, कि जब अंग्रेजों ने भारत पर आक्रमण किया और भारत पे अपना कब्जा कर लिया, तो जब वो जो भारतीय थे उनको वो अपने गुलाम समझते थे। मैंने एक पुराना फोटो देखा जिसमें एक अंग्रेज सिपाही न्यूज पढ़ रहा है और दो हमारे भारतीय बैठकर उसके जूतों को पॉलिश कर रहे हैं। जूते उसने पहन रखे हैं और जो जूते पॉलिश कर रहे हैं उनके शरीर पे कपड़ा नहीं है, सिर्फ धोती बांधी है, सर पे पगड़ी रखी है, एक गमछा है और उसके बूट पॉलिश कर रहे हैं और ये न्यूज पढ़ रहा है। ये हम लोगों की हालत की थी उन्होंने। और जो अंग्रेजों की चमचागिरी करते थे उनको वो अवार्ड देते थे, कौन सा? राय बहादुर, आपने सुना है? पुरानी फिल्मों में आता राय बहादुर साहब, जो हिंदू होता उसको राय बहादुर और जो मुस्लिम होता उसे खान बहादुर, ये टाइटल देते थे जो अंग्रेजों की हां में हां मिलाते थे। आप लोगों को पता नहीं है हमारे साथ क्या कुछ नहीं हुआ। फिर एक सिस्टम था हमारे किसानों पे लगान का, मतलब एक टैक्स था फसलों के ऊपर कि आपने इतनी फसल काटी है इतना हमें टैक्स दिया जाए, ये अंग्रेज ने लगाया। उससे पहले मुसलमानों ने हम पे टैक्स लगाया, उसको बोलते थे जजिया। मुसलमानों ने टैक्स लगाया जजिया, अंग्रेजों ने लगाया लगान। और हमारी हालतें ऐसी थी कि हम सिर्फ उनके जूते साफ करने और उनके कुत्तों को घुमाने या उनकी गाड़ियों की ड्राइवरी करने के सिवा कुछ नहीं कर पा रहे थे। और हमारी माताएं बहनें उनकी मैडमों के उनकी मैमों के कपड़े धोती, जूते पॉलिश करती और पीछे पीछे छतरी लेके घूमती। ये हमारे इंडियंस की हालत थी। इसलिए हमारे सारे शास्त्र संस्कृति को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन ये सनातन धर्म की शक्ति है कि आज भी सीना तान के दुनिया में खड़ा है। बाकी लोग जहां भी गए उसके कल्चर को समाप्त कर दिया। पर्शिया में गए उनके कल्चर को पूरा समाप्त कर दिया। यूरोपियन ऐसे कई देशों में गए जहां वहां का कल्चर समाप्त कर दिया। लेकिन यहां आज भी भारत का कल्चर, हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार छाती ठोक के खड़े हैं। और अभी तो कुछ ज्यादा ही है क्योंकि अब लोगों के दिमाग में बात बैठ चुकी है कि मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। ये अब एक जागृति आई है, जागृति आई है। इसलिए हमारे यहां रिलीजन का कोई रिप्लेसमेंट है ना ही मजहब का कोई रिप्लेसमेंट है, क्योंकि ये हमसे है ही नहीं। हमारे यहां तो क्या है? धर्म। क्या है? धर्म है ना, धर्म। अब धर्म स्वधर्म है। स्वधर्म का मतलब है हर एक की अपनी अपनी ड्यूटी, अपनी अपनी ड्यूटी, अपनी अपनी। और देखो मैं मेरे गुरु महाराज की कृपा से मैं आप लोगों को कोशिश कर रहा हूं कुछ और सरलता से। क्या है? क्या है स्वधर्म? मतलब अपनी ड्यूटी। यहां स्वधर्म का मतलब ये नहीं है कि हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन ईसाई, यहां ये बात नहीं, क्योंकि गीता इन बातों में जाती ही नहीं है। भगवद गीता इज द बियॉन्ड ऑल दिस थिंग्स। भगवद गीता इज द बियॉन्ड ऑल रिलीजन्स। भगवद गीता बात ही नहीं, किसी रिलीजन्स की तो भगवद गीता बात ही नहीं करती, किसी मजहब की तो भगवद गीता उससे बहुत ऊपर है। यहां तक कि भगवद गीता शरीर की भी बात नहीं करती। बाकी जितने धर्म ग्रंथ है दूसरे दूसरे धर्मों के, वो सिर्फ अपने फॉलोअर्स की बातें करते हैं कि भाई ये फॉलो करोगे तो ही ये कहलाओगे, नहीं तो नरक में जाओगे। भगवद गीता ये कहीं नहीं कहती है। हमारा कितना विशाल है कि जो गीता को माने वो भी हिंदू है, जो न माने वो भी हिंदू ही कहलाएंगे, लेकिन दूसरे धर्मों में ऐसा नहीं। दूसरे धर्मों के लोग उनकी विशेष किताब को न माने तो बोलेंगे आप नहीं हो हमारे धर्म के। क्यों? बोला आप हमारी किताब पे अपना विश्वास ईमान नहीं है तुम्हारा, निकल जाओ, खारिज कर दिया जाएगा, रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन यहां आप गीता को मानो तब भी हो, गीता को न मानो तब भी हो, इतनी बड़ी स्वतंत्रता, इतना विशाल स्वरूप है हमारे यहां। तो अब सुनो, गीता में कृष्ण ने कहा कि भाई स्वधर्म में कोई त्रुटि भी हो तो भी उसमें तुम्हारा भला होगा, लेकिन दूसरे का धर्म भली भांति भी पालोगे तो भी उसमें तुम्हारा कोई फायदा नहीं। अब ऐसे कैसे? तो चलो मेरे बच्चों, हम समझते हैं। एक बूढ़ी मां है और एक ही होती है, एक बूढ़ी मां है और उसका एक बेटा है, एक बेटा है। अब वो बेटा अपनी मां की सेवा करता है, क्या करता है? सेवा करता है अपनी मां की, दवाई देता है, खाना देता है, कपड़े संभालता है। ये कौन कर रहा है? बेटा कर रहा है। लेकिन कुछ उस सेवा में उसकी गलतियां भी होती है, गलतियां भी होती है। अब वही लड़का 10 घर दूर एक दूसरी बुढ़िया है, उसकी सेवा बहुत 100% अच्छे से करता है। अब बताओ कि अपनी मां की सेवा करना है, भले उसमें गलतियां हैं, उसमें उसका भला होगा या एक दूसरी स्त्री की बहुत अच्छे से सेवा हो उसमें भला है? ये उसका स्वधर्म है, क्योंकि मां की सेवा करना ये उसका धर्म है, स्वधर्म। और अगर वो मां की सेवा छोड़ के किसी और की करेगा तो अपने स्वधर्म से तो हट गया ना, क्योंकि उसका धर्म है अपनी मां की सेवा करना। मां की सेवा करके जो समय बचे वो दूसरे की करेगा तो ठीक बात, लेकिन अब वो मां की सेवा करते करते कोई गलती भी कर ले तब भी उसका उसका भला है। इस बात समझ में आ रही? तो भी उसका भला है क्योंकि मां की सेवा कर। ऐसे ही एक शिष्य अपने गुरु की सेवा करता है सुबह से शाम तक, उस गुरु सेवा में कुछ उससे गलतियां भी हो जाती है, लेकिन अपने गुरु को छोड़ के किसी दूसरे की जाके सेवा करे बहुत अच्छे तरीके से तो उसका कोई भला होने वाला नहीं, क्योंकि यहां उसका ये स्वधर्म है ना? ऐसे एक पत्नी अपने पति की सेवा करते करते कोई गलती भी कर जाए और अगर दूसरे पुरुष की जाके बहुत अच्छे से सेवा करे तो क्या होगा? उसका वहां जाके कल्याण होगा, यहां वो त्रुटियां भी कर रही है तब भी उसका कल्याण है क्योंकि ये उसका स्वधर्म है। समझ गए? ऐसे कृष्ण कहते हैं जो तुम्हारा स्वधर्म है वो करो, परधर्म तुम्हारे लिए श्रेष्ठकर नहीं है। तुम्हारा स्वधर्म क्या है? पुत्र हो तो माता पिता को देखना, ये तुम्हारा स्वधर्म है। पिता हो तो अपने संतान को संभालना, ये तुम्हारा स्वधर्म है। घर के बड़े हो तो परिवार को संभालना ये तुम्हारा स्वधर्म है। बस इतनी तो सिंपल बात कृष्ण समझा रहे। और अगर उसमें कोई गलती भी हो जाए तो कोई पाप नहीं लगेगा, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन दूसरे की जाके 100% अच्छी सेवा करे। अब एक मैं फिर कहता हूं, एक स्त्री अपने पति की सुबह से शाम तक सेवा करती, उसमें कभी गलती भी हो गई, जैसे भाजी में नमक नहीं डाला, दाल में बघार करना भूल गई, कपड़े को प्रेस करना भूल गई, तो ये त्रुटियां हैं। लेकिन फिर भी किसकी सेवा कर रही? पति की। और वो किसी पड़ोसी आदमी की सेवा करे 100% सही, तो भी वहां पाप है, तो भी वहां पाप है, मानते हो ना? इसी तरह से कृष्ण कहते स्वधर्म में अगर कोई त्रुटि भी है तब भी तुम्हारा भला है। परधर्म मतलब कहीं और जाके वो सेवा करोगे तो उसमें तुम्हारा कोई भला होने वाला नहीं। जी और कोई पूछो? जी है कोई और? हाँ जी, हाँ दादा को दो।
हरे कृष्ण बाबूजी। श्री राम जब सीता मैया को ढूंढ रहे थे जंगल में तो उनको मालूम था कि बाली एकदम सक्षम है और बाली से रावण भी डरता था, तो बापूजी हमको बताओ तो श्री राम ने बाली को क्यों नहीं बोला कि मेरे पत्नी को जाके आप ढूंढ के आइए, सुग्रीव को क्यों बोला उसने, हालांकि सुग्रीव तो कमजोर था।
बात कमजोर और जोर की नहीं है, बात यह है कि कौन भगवान की ओर है। अब ये मुझे बताओ, अगर राम शक्तिवान को ही देखता तो फिर जंगल में शेर थे, बंदरों को क्यों बोला? एक छोटा सा है तर्क कि आप कहते हो कि सुग्रीव को बोला, बाली सुग्रीव से भी ज्यादा, रावण भी डरता था, तो बाली को क्यों नहीं बोला, सुग्रीव को क्यों बोला? तो फिर ऐसे ही देखे तो जंगल में शेर है, शेर को क्यों नहीं बोला, बंदर को क्यों लिया? दो जवाब मैं बताता हूं। बात ये नहीं है कि कौन शक्तिवान है और कौन कमजोर है, क्योंकि श्री राम स्वयं शक्ति के दाता है, वहां शक्तिवान और कमजोर की बात ही नहीं हो रही थी। आप देखिए उसका प्रमाण मिला कि जब भगवान श्री राम ने लंका पे चढ़ाई की तब उस समय रावण के पास सारे उस जमाने के आधुनिक अस्त्र शस्त्र थे, आधुनिक थे, और यहां पर बंदरों के पास कुछ नहीं था। था तो क्या था, वृक्षों की टहनियां थी और छोटे मोटे पत्थर थे, और था क्या, कुछ था? था कुछ नहीं था। लेकिन वहां से जब हथियार चलते तो रावण की सेना के हाथ में हथियार थे और राम की सेना के दिल में हथियार थे, जय श्री राम। मुंह में हथियार थे, जय श्री राम। जब बंदर कोई पत्थर फेंकता तो पत्थर हाथ से फेंकता था, लेकिन शक्ति नाम से आती थी, जय श्री राम। इसी शक्ति ने तो अयोध्या में मंदिर पूरा बना दिया, जो पिछले 300-400 साल से नहीं बन पा रहा था, लेकिन ये बन गया, उद्घाटन हो गया। और इस बार रामनवमी श्री राम ने अपने भव्य स्थान में मंदिर में बनाई। तो याद रखना शक्ति तो उसी की है, और नीच को ऊंच करे मेरे गोविंद काहे को न डरे, वो किसी कमजोर से भी बहुत बड़ा काम ले सकता है, चाहे चाहे मेरा हरि चाहे तो एक पत्थर से एटम बम का काम ले सकता, मेरा हरि चाहे तो। और मेरा हरि न चाहे तो बम भी फुस हो जाते। 71 की वार की सत्य घटना बताओ। अब आप लोगों को 71 की वार का क्या, आपके घर में ही वारे चल रही है और उस वार के चक्कर में अपनी अपनी वारी का सोच रहे कि मेरी वार आए तो मैं भी छोड़ू नहीं। 71 की वार में राजस्थान की बॉर्डर पर एक मंदिर है माता का, जो पाकिस्तान की बॉर्डर जो है वहां के डेजर्ट की, उमरकोट वगैरह जो पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया है वहां से बिल्कुल नजदीक, यानी ऐसा भी नहीं है कि कोई 100 किलोमीटर भी, ऐसा भी नहीं, 15-20-25 किलोमीटर बहुत बड़ी बात है। उस एरिया में एक माता का मंदिर है, ये 71 चाहो तो पढ़ लो। पाकिस्तानी सेना ने इतने तोप के गोले फेंके, माता के मंदिर के आजू बाजू जो भी गोले गिरे एक भी नहीं फटा। आप चाहो तो पढ़ लो 71 का वार, ये ऐसे में नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं कभी भी अंधविश्वास पे तो भरोसा करता ही नहीं हूं, बिल्कुल नहीं करता हूं अंधविश्वास पे भरोसा इन चीजों पे कि रात को बाबा उठे असांजो बाबो आयो मुझे सपने में, और सपने में बाबो आयो मुझे ऑपरेशन कयो बीमारी लई वही, मैं इन चीजों पर भरोसा नहीं करता। ये धागे, ये तावीज, ये पानी पड़ना, ये जंतर बंतर तंतर, मैं इन पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता हूं। मेरा हरी करे सो ही होए, तुलसी भरोसे राम के निर्भय हो के सोए, होनी अनहोनी ना हो हरी करे सोए। मेरा हरी है और मेरे गुरु ने तो सिखा दिया, उसके पास हम सबों के लिए एक परफेक्ट प्लानिंग समय समय पे रिवील होती जाएगी। मैंने थोड़ी सोचा था कि उल्लासनगर आऊंगा, आज से हो सकता 35 साल पहले मैंने उल्लासनगर का कभी नाम भी ना सुना, लेकिन आज देखो ये मेरे हरि की एक प्लानिंग है, एक उसकी प्लानिंग। एक बम नहीं फटा, सब फुस हो गए और आज भी वहां पड़े हैं म्यूजियम में दिखाने के लिए, ये सत्य बात है। तो ये कहना कि सुग्रीव कमजोर था और बलि इतना शक्तिशाली था तो फिर तो बाली को भेजना चाहिए थी जिसे रावण डरता था। लेकिन एक बात सुनो मेरे काका, बाली को भी बल देने वाला मेरा राम था। बाली कोई अपने घर से बल नहीं लाया था, या कोई स्पिनिच नहीं खाया था पोपाई द सेलर की तरह और शक्ति आ गई। बाली को भी बल देने वाला मेरा हरि था, और जो बाली को दे सकता है वो सुग्रीव को नहीं दे सकता। अरे सुग्रीव तो छोड़ो, उन्होंने तो बंदरों को बल दिया, चल जा बच्चे बना दाल पुल, और इतिहास विश्व का पहला पुल, पहला ब्रिज हमने दिया, भारतीयों ने कॉन्सेप्ट दिया कि बिना कश्ती के भी समंदर पार हो सकता है ब्रिज। ये हमने बाद में अंग्रेजों ने बनाए, कौन सा ब्रिज है बाबा, वो हम सैन फ्रांसिस्को गए थे, गोल्डन गेट ब्रिज है, और न्यूयॉर्क में वो है ब्रुकलिन है, ब्रुकलिन ब्रिज है, लंदन ब्रिज है, ये सारे ब्रिज है, ये तो बाद में बने। हम लोगों ने तो आज से हजारों हजारों साल पहले कॉन्सेप्ट दे दिया कि ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबल है। तो उस समय वो ब्रिज बनाने वाले कौन थे, सब इंजीनियर, कोई L&T कंपनी, नौ सारे वानर थे। लेकिन उन वानरों से देखो वो चाहने तो किसी से भी कुछ भी काम ले सकता है। मेरा हरि हजार बात वाला किसी से भी कोई भी काम ले सकता है अगर वो चाहे तो। तो भाई ये कहना कि बलि बहुत बाली बहुत शक्तिशाली था, राम ने उसको क्यों नहीं भेजा? बाली को तो छोड़ दो, अंगद कौन था? बाली का बेटा था ना, उसने तो अंगद को भी इतना बल दे दिया कि रावण उसके पांव को भी नहीं हिला सका। याद है? याद है रामायण की घटना? अंगद ने कहा, रावण ने अपना पूरा जोर लगा दिया अंगद के, तो अब बताओ बाली में जोर या अंगद में? तो मेरा हरी चाहे तो बाप से भी बेटे से बड़ा काम ले सकता है, जो चाहे इसलिए भरोसा रखो वो चाहे तो आपसे भी कुछ करवा सकता है, आपसे भी कुछ करवा सकता है, क्यों नहीं करवा सकता? मुकुम करोति वाचालाम पंगोर क्रियम लध्यम, गूंगे बोलने लगते मेरे हरि की कृपा से। और सच्ची बात है, गूंगे ही बोलते थे, हम कौन थे? सब गूंगे थे, तो सिर्फ ऐसे बोलते और कुछ बोल पाते थे? हम तो ही तो सब गूंगे थे, मेरे हरि ने बुलवाया, हम सब लंगड़े थे, अपाहिज थे, चल पाता था कोई? चलते थे तो गिर जाते थे, मेरे हरि ने आज चलाया कि हम दौड़ रहे हैं, है कि नहीं? तो इसलिए मेरा हरि है हजार हाथ वाला, उस पर भरोसा रखो, वो जो चाहे वो कर सकता है, इसलिए निराश मत होना, निराश मत होना कि अरे हम तो कमजोर है, नो, हम कमजोर है, वानर कमजोर थे, श्री राम थोड़ी कमजोर। और उन्होंने किससे काम लिया? वानरों से, और दिखाना चाहते रावण तू 20 हाथ 10 सर, तेरे 10 सर है लेकिन मैं उन 10 सरों का सरकार हूं, तेरे सर है मैं सरकार हूं, भूल जा, तुझे भी मैं चाहूं तो बंदरों से भी नाच करवा सकता हूं। समझ में आए? और कुछ पूछो, अच्छा लगा आपने पूछा।
आपके श्री चरणों में प्रणाम। बापू जी आपने कहा कि हम कृष्ण के अंश हैं, तो फिर हम कृष्ण के बिना रह कैसे सकते हैं? हमें अभी भी कृष्ण को याद करना पड़ता है।
क्यों? इसकी वजह यह है कि एक छोटा बच्चा जो सिर्फ 2 दिन का है और उसको किसी और ने उठा लिया, तो ये बताओ जब वो 5 साल का होगा तो किसके बिना नहीं रह पाएगा? जिसने उसको उठाया, क्योंकि उसने तो उसको ही पहचाना है ना, तो उसके बिना नहीं रह पाएगा। ऐसे हमको तो बचपन से संसार ने उठा लिया, तो हम संसार के बिना रह ही नहीं पाते। फिर गुरु महाराज जब याद दिलाते हैं कि तुम हो किसके, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें होश आता है, आहिस्ता आहिस्ता होश आता है, किसी को पूरी तरह से आ जाता है, तो कृष्ण में स्थिर हो जाते हैं। बाकी सबसे भी निभाते हैं, सबका धन्यवाद कहते हैं कि आपने अभी तक मुझे संभाला पाला पोषा, आपका धन्यवाद। लेकिन जैसे मैं एक हंस की कथा सुनाता हूं, सुनाऊं? सुनाऊं? सुनो। अब इसमें तर्क मत निकालना। एक हंस था मानसरोवर, मानसरोवर मेरी इच्छा है, पता है एक बात बताऊं, बहुत काम की, भारतवर्ष में जिसने जन्म लिया है, कहा, और अगर भारतवर्ष में जन्म लेकर वो इन स्थानों के दर्शन न करे, भारत में जन्म लेने का व्यर्थ गवा दिया, कल व्यर्थ की बात आई। और हम स्विट्जरलैंड जाते हैं, बैंकॉक सिंगापुर जाते हैं, लेकिन भारत जहां अयोध्या, जहां मथुरा, जहां वृंदावन, जहां काशी, जहां प्रयाग, द्वारिका, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम, तिरुपति, शुक्ताल, नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, केदारनाथ और अन्य जो इस धरती का श्रृंगार है, भारत भाग्य विधाता, जहां भारत में साक्षात नारायण मेरा हरि बार बार आया, बार बार आया, कभी अयोध्या में, कभी मथुरा में, कभी गोकुल में, बार बार आया। ऐसी भारत भूमि में हम रहते हैं और हमारी आंखें इनके दर्शनों से वंचित है, वंचित है। हेलेन केलर की, आपने कभी हेलेन केलर के लिए सुना होगा? आपने हेलेन के लिए सुना होगा, हेलेन केलर के लिए नहीं सुना होगा। उसकी आंखें नहीं थी, आंखें नहीं थी, लेकिन वो बहुत बड़ी ऑथर है, पता है, बहुत बड़ी ऑथर है। उसने एक किताब लिखी, थ्री डेज, कौन सी किताब थी, थ्री डेज टू गो सी वर्ल्ड, ऐसे कुछ है, मैं नाम भूल गया हूं उस किताब का। कौन सी किताब है भाई, कोई है आज? चलो अभी इसमें हम टाइम नहीं लेते। उस किताब की पब्लिशिंग के बाद जब लोगों ने पढ़ी तो हेलेन केलर ने कहा था, सिर्फ तीन दिन मुझे आंखें मिल जाए तो मैं ये देखूं दुनिया में जो मैंने सुना है। क्या सुना है? नियाग्रा फॉल, एवरेस्ट, एफिल टावर, पीसा टावर, वेनिस, और वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी, और पता नहीं क्या क्या। मेरी आंखें आ जाए सिर्फ तीन दिन। तो लोगों ने बोला, तीन दिन ये आंखें मांग रही है हमें, तो बचपन से आंखें क्यों ना देखे। उस जमाने में दुनिया में टूरिज्म बढ़ गया था, तो सोचो भारत में आके अयोध्या के दर्शन ना करे, हद हो गई। जहां हमने रामायण में बचपन से पढ़ा है, भारत में आके मथुरा ना जाए, वृंदावन ना जाए, भारत में आके बिहारी जी के दर्शन ना करे, हद हो गई। राधा वल्लभ लाल के दर्शन ना करे, राधा रमण के दर्शन ना करे, गोविंद देव के जाके जयपुर में दर्शन ना करे, हद हो गई। जाके बद्रीनाथ के दर्शन ना करे, द्वारका के दर्शन ना करें। लेकिन ये सत्य है, ये सत्य है। इसलिए भारत भाग्य विधाता, ये वो भारत है जहां मेरा हरि बार बार आया, आना पसंद किया, आना। क्योंकि उस जमाने में, प्राचीन काल में भारत ही तो था। अरे आप लोगों को कदर नहीं है, कदर नहीं है कुछ नहीं भारत की। सोचो जरा, कौन था? कोलंबस था, वास्को डी गामा था। क्या ढूंढने आया था? भारत ढूंढने आया। सोचो भारत की कितनी महिमा होगी। भारती कभी किसी को ढूंढने नहीं गया, क्योंकि यहां तो सोना ही सोना था। तो ये है अपना भारत, और हम लोगों को पता ही नहीं। पानी उते झूपड़ा मूरख उंच मर, पानी में रहे देखत आवे मोही हंसी, पानी में रहे मिन प्यासी बिल, मछली पानी में प्यासी मरती, हंसते कबीर साहब। तो हमें तो आंखें बंदी है, अरे आंखें मिलिए उल्लास नगर वालों, कम से कम वृंदावन चंद्र के ही दर्शन कर लो, इतना तो करो। वो आपके शहर में आए हैं अपना गोलोक छोड़ के, आपके शहर में आपके लिए आए। तो हम बात क्या कर रहे थे, किसकी? हाँ हंस, लेकिन टाइम पूरा हो गया। नित्य भजो, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताई गो, जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा, जय जय। तो अभी मेरा जनता दरबार लगा है।